लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि श्रम के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति परिपूर्णता हासिल करे, परिवारों का भरण पोषण प्रतिष्ठापूर्ण ढंग से हो सके तथा समाज को मानवीय बनाया जा सके। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार ये आराधना विधि चिंतन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, मानव के जीवन में एक भय जो उसे सबसे अधिक चिंतित करता है वह है किसी चीज को खोने का भय। वे चीजें, वे लोग, वे स्थान और वे सारी बातें जो हमारे लिए अच्छी और प्यारी लगती हैं, उन्हें खोने का भय सदैव हमारे जीवन में बना रहता है, जिसके कारण हम सभी अपने में भयभीत रहते हैं। इस खोने में हम अपने जीवन में एक तरह से खालीपन का अनुभव करते हैं, जो हमारे लिए दुखदायी होता है। इस दुनिया में कितने ही लोग हैं जो अपनी प्यारी चीजों को खोने के गम से कभी बाहर नहीं निकल पाए हैं। श्रोताओं, पास्का के चौथे रविवार को माता कलिसिया एक भले चरवाहे के रविवार स्वरूप मनाती है। इस भले चरवाहे के रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए सुसमाचार पाठ में हम जीवन के नहीं छीने जाने की बात सुनते हैं। यह हमारे लिए उस जीवन की बात कहता है जो हमें भले चरवाहे में मिलता है। उस भले चरवाहे के सानिध्य में आने और रहने से दुनिया की कोई भी चीजें हमें उनसे अलग नहीं कर सकती हैं। हमें उनसे कोई भी अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि वे हमें अपनी सुरक्षा और देखभाल में रखते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने में उन बातों की खोज करें कि वे कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम अपने से छीने जाने का अनुभव करते हैं। हमारे पास वो कौन सा निधि है जो हमें दी जाती, जिसके नष्ट होने का भय हमें भयभीत करता है। वे कौन सी बातें हैं जिनमें हम अपने लिए पूर्ण सुरक्षा का अनुभव करते हैं।
मेरी भेड़े मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूँ, उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा और कोई भी उन्हें मुझसे नहीं छीन सकेगा। मेरे पिता ने मुझे उन्हें दिया है, वह सबसे महान है, कोई भी उन्हें पिता से नहीं छीन सकता। मैं और पिता एक हैं।
श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें अपने में इस बात की अनुभूति लाए कि इस धारा पर कोई तो है जो हमारे जीवन की सुधि लेता है, और यह भले चरवाहे यीशु ख्रिस्त हैं, जिन्होंने अपनी भेड़ों की रखवाली हेतु अपने जीवन का बलिदान किया है, जिसमें हम अपने जीवन की परिपूर्णता को पाते हैं। श्रोताओं, प्रेरित चरित से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए अंताकिया समुदाय के यहूदियों में खोने के एक भय का जिक्र करता है। पौलुस और बरनाबस अंताकिया में पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त के सुसमाचार की घोषणा कर रहे होते हैं, जिसे सुनने के लिए लोगों की बड़ी भीड़ इतनी अधिक जमा हो जाती कि यहूदियों को ईर्ष्या और जलन होने लगती है। यहूदी इस जलन के कारण पौलुस और बरनाबस के विरुद्ध निंदा करते हुए उनकी बातों का खंडन करते और उनके विरोध में लोगों को भड़काते हैं। लेकिन दो प्रेरित निडर होकर ईश्वर के वचनों की घोषणा करना जारी रखते हैं। श्रोताओं, यहूदियों में जलन और ईर्ष्या का होना स्वाभाविक था, क्योंकि विश्वासियों का जनसमूह बहुत अधिक मात्रा में जमा होता था, जो उनमें अनंत जीवन हेतु उत्पन्न प्यास की ओर हमारा ध्यान इंगित कराता है। आज भी लोग उन सत्संगों और धार्मिक समारोह में अत्यधिक मात्रा में जमा होते हैं, क्योंकि ईश वचन और धार्मिक बातों को सुनने में उन्हें एक तरह से आंतरिक आनंद, खुशी और शांति की अनुभूति होती है। यह मानवीय हृदय में व्याप्त ईश्वर की खोज और उनके निकट आने की आतुरता को हमारे लिए प्रकट करता है, जो हर एक सजीव और चेतन मन की चाह है। श्रोताओं, मानव के रूप में हम केवल भौतिक शरीर मात्र नहीं हैं, बल्कि हम सभी ईश्वरीय आत्मा के एक अंग हैं। हम सबों में ईश्वर का वह दिव्य आत्मा निवास करता है, जो हमें ईश्वर से और ईश्वर में मिलने वाले परम आनंद की ओर आकर्षित करता है। यह अनंत जीवन की प्यास को व्यक्त करता है, जिसकी पूर्ति हमें भौतिक चीजों में नहीं होती है, और यही कारण है कि जीवन की सारी सुख सुविधाएं, धन संपत्ति और भोग विलास की चीजों का पान करने के बाद भी मानव अपने में अतृप्त रहता है। मानवीय जीवन की अतृप्तता आध्यात्मन की ओर उसे अभिमुख होने में मदद करती है, जहां वह सर्वशक्तिमान ईश्वर की खोज करता है, जिसमें हम अपने जीवन की पूर्णता का अनुभव करते हैं। प्रेरितों के प्रति यहूदियों में ईर्ष्या और जलन का कारण यही है कि वे अपनी भेड़ों को खोता पाते हैं। वे अपने अनुयायियों को अपने से दूर दूसरी चारागाह में जाता पाते हैं। यह हमारे लिए मानवीय मानसिकता को व्यक्त करता है, जिसका सामना स्वयं यीशु ख्रिस्त को करना पड़ा। मानव के रूप में हम दूसरों को अपने अधीन करने की चाह रखते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरे हमारी बातों को सुने, हमारे अनुसार चलें, जो हमें दूसरों में बड़ा और प्रतिष्ठित होने की अनुभूति प्रदान करती है। अपने अनुयायियों और प्रशंसकों को खोना मानवीय आत्म छवि को ठेस पहुंचाती है। परिणाम स्वरूप हम दूसरों के प्रति हिंसक हो जाते हैं। श्रोताओं, प्रकाशना ग्रंथ से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमारे लिए मेमने के अनुयायियों के एक विशाल जनसमूह का जिक्र करता है, जिसे योहन दिव्य दर्शन में देखते हैं। वह मेमना हमारे लिए और कोई नहीं बल्कि स्वयं यीशु ख्रिस्त हैं, जिन्होंने अपने रक्त से हमारे पापों के दाग और भार को दूर कर दिया है। और क्योंकि उन्होंने सारी मानवता को पापों से शुद्ध करते हुए उन्हें चंगाई प्रदान की है, उस मेमने के अनुयायियों की संख्या अनगिनत है। यहाँ हम मानव के रूप में अपने लिए एक दूसरे भाव की अभिव्यक्ति को पाते हैं, अर्थात दुनिया का कोई भी मानव दुख, पीड़ा, कष्ट, बीमारी और जीवन की कठिन परिस्थितियों में पड़े रहने की चाह नहीं करता है, बल्कि हम सभी उन परिस्थितियों से परे जाने का प्रयास करते हैं। ऐसा करना हमें भले चरवाहे की आवाज को सुनने और उसके पीछे आने की मांग करता है, जिसका श्रवण हमने आज के सुसमाचार में किया। भले चरवाहे हमारे जीवन की सारी कमजोरियों, परेशानियों और विकट परिस्थितियों से वाकिफ हैं, अतः वे स्वयं हमारी ओर प्रेम भरी निगाहें फेरती और हमें अपने प्रेम में पुचकारते हुए उठाते हैं। वे हमारे संग कठोरता से पेश नहीं आते, बल्कि हमारी घायल परिस्थिति में हमें सहारा देते और हमें ऊपर उठने, आगे बढ़ने में मदद करते हैं। भले चरवाहे के चारागाह में रहना हमें किसी भी चीज से भयभीत नहीं करता है। आइए हम माता कलिस्स के लिए ईश्वर से फिलहाल ही नियुक्त नए चरवाहे संत पापा लियो 14वें के लिए प्रार्थना करें, जिससे वे अपने रेवड़ की देखरेख भली भांति कर सकें और हमें इस कठिन दौर में सही मार्ग में चलने हेतु मार्गदर्शन कर सकें।
यीशु तू है महान, सारे जगत में महान, तू मेरा बल मेरा प्राण, तू मेरे जीवन की शान, यीशु तू है महान, सारे जगत में महान, तू मेरा बल मेरा प्राण, तू मेरे जीवन की शान, यीशु तू है महान। अंधियार गलियों में भी रक्षा मेरी तू है करता, जब जब मैं पथ भूल जाता आके मुझे तू संभालता, तू ही है मेरा जीवन सहारा, तू ही है मेरा जीवन सहारा, तुझ में ही मुझको भरोसा, यीशु तू है महान, सारे जगत में महान।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने शनिवार सुबह वाटिकन में सभी कार्डिनलों की बैठक में उनका स्वागत किया और इन दिनों संत पापा फ्रांसिस को खोने के कारण दुखद समय को एक साथ मिलकर सामना करने और विभिन्न जिम्मेदारियों को लेने हेतु सभी को धन्यवाद दिया। संत पापा ने कहा, आप संत पापा के सबसे करीबी सहयोगी हैं और इससे मुझे एक ऐसे दायित्व को स्वीकार करने में बहुत राहत मिलती है जो स्पष्ट रूप से मेरी क्षमता से परे है। आपकी उपस्थिति मुझे याद दिलाती है कि प्रभु जिन्होंने मुझे यह मिशन सौंपा है वे इसकी जिम्मेदारी उठाने में मुझे अकेला नहीं छोड़ते। मैं सबसे पहले यह जानता हूँ कि मैं सदैव उनकी सहायता पर भरोसा कर सकता हूँ तथा उनकी कृपा और ईश्वरीय कृपा से आपकी निकटता पर तथा विश्व भर में अनेक भाई बहनों की निकटता पर भरोसा कर सकता हूँ जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, कलीसिया से प्रेम करते हैं और प्रार्थना एवं अच्छे कार्यों द्वारा यीशु मसीह के प्रतिनिधि का समर्थन करते हैं। संत पापा ने कार्डिनल मंडल के डीन कार्डिनल जोआनी बत्तीस्ता रे को धन्यवाद दिया। अपनी बुद्धिमता और लंबे जीवन के अनुभव से उन्होंने इस समय बहुत मदद की है। संत पापा ने पवित्र रोमन कलीसिया के कमरलेंगो कार्डिनल केविन जोसेफ फायरल को भी धन्यवाद दिया जिन्होंने सेदे वाकेंट और कॉन्क्लेव के आयोजन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संत पापा ने उन कार्डिनलों के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त की जो स्वास्थ्य कारणों से उपस्थित नहीं हो सके परंतु प्रार्थना द्वारा उनको समर्थन दिया। संत पापा ने कहा कि संत पेत्रुस से लेकर मुझ तक हम अयोग्य उत्तराधिकारी ईश्वर और उनके भाइयों के विनम्र सेवक हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। यह मेरे कई पूर्ववर्तियों के उदाहरणों से अच्छी तरह से प्रदर्शित हुआ है जिसमें सबसे हाल ही में संत पापा फ्रांसिस का उदाहरण है जो सेवा में पूर्ण समर्पण और जीवन में गंभीर अनिवार्यता की अपनी शैली के साथ मिशन के समय ईश्वर के प्रति समर्पण और पिता के घर में वापस आने के क्षण तक शांतिपूर्ण विश्वास के साथ कार्य किया है। आइए हम इस बहुमूल्य विरासत को एकत्रित करें और विश्वास से आने वाली उसी आशा से प्रेरित होकर अपनी यात्रा पुनः आरंभ करें। संत पापा ने कहा कि सुसमाचार के सिद्धांत हमेशा ईश्वर के परिवार के जीवन और कार्य को प्रेरित और अनुप्राणित करते हैं, ऐसे मूल्य जिनके माध्यम से पिता का दयालु चेहरा स्वयं प्रकट हुआ है और पुत्र में स्वयं को प्रकट करना जारी रखता है जो किसी भी व्यक्ति की अंतिम आशा है जो ईमानदारी से सत्य न्याय शांति और भाईचारे की तलाश करता है। चूंकि मुझे इस मार्ग पर आगे बढ़ने का आह्वान महसूस हुआ इसलिए मैंने लियो 14वें का नाम लेने के बारे में सोचा। संत पापा लियो 13वें ने वास्तव में ऐतिहासिक विश्व पत्र रेरुम नोवारुम के साथ पहली महान औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में सामाजिक प्रश्न को संबोधित किया और आज की कलीसिया भी जो सामाजिक सिद्धांत की अपनी विरासत प्रदान करती है ताकि वे एक और औद्योगिक क्रांति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास का जवाब दे सके जो मानव सम्मान न्याय और कार्य की रक्षा के लिए नई चुनौतियां लेकर आता है। और संत पापा लियो 14वें ने शुक्रवार 9 मई को कार्डिनल मंडल के कार्डिनलों के साथ सिस्टीन चैपल में परमाध्यक्ष के रूप में अपने पहले मिसा बलिदान का अनुष्ठान किया। अपने प्रवचन में संत पापा ने हमेशा मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध बेहतर बनाने का आह्वान किया और उन्होंने कार्डिनल निर्वाचकों को उनके प्रति उनके विश्वास के लिए धन्यवाद दिया। संत पापा ने कहा, मेरे कार्डिनल भाइयों, जैसा कि आज हम पवित्र मिसा समारोह मना रहे हैं, मैं आपको प्रभु द्वारा किए गए चमत्कारों पर चिंतन करने के लिए आमंत्रित करता हूँ, उन आशीषों पर जिसे प्रभु पेत्रुस के मंत्रालय के माध्यम से हम सभी पर बरसा रहे हैं। आपने मुझे उस क्रूस को उठाने और उस मिशन को पूरा करने के लिए बुलाया है और मैं जानता हूँ कि मैं आप में से हर एक पर भरोसा कर सकता हूँ कि आप मेरे साथ चलेंगे, क्योंकि हम एक कलीसिया के रूप में, यीशु के मित्रों के समुदाय के रूप में, विश्वासियों के रूप में शुभ समाचार की घोषणा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उधर संत पापा लियो 14वें के चुनाव पर ख्रीस्तीय जगत से खुशी, समर्थन और उम्मीद के संदेश आए हैं। एंग्लिकन, लुथरन, ऑर्थोडॉक्स और एवांजेलिकन समुदायों के धार्मिक नेताओं ने बधाई दी है और न्याय, शांति, एकता के साझा मूल्यों पर जोर देते हुए प्रार्थना की है। एंग्लिकन समुदाय के महासचिव रेवरेंड अंतोनी पोगो ने एक बयान जारी करते हुए कहा, हम बहुत खुशी से संत पापा लियो 14वें के चुनाव और नियुक्ति का स्वागत करते हैं। हम अपनी प्रार्थनाएं, उत्सव और प्रोत्साहन साझा करते हैं क्योंकि संत पापा अपना वैश्विक मंत्रालय संभाल रहे हैं। लुथरन वर्ल्ड फेडरेशन के महासचिव रेवरेंड डॉक्टर एनी बर्कहार्ट ने नए संत पापा को बधाई दी। उन्होंने निरंतर सहयोग के लिए आशा व्यक्त की। हम नए परमाध्यक्ष के लिए प्रार्थना करेंगे कि रोमन कैथोलिक कलीसिया और लुथरन कलीसिया मिलकर जरूरतमंद लोगों की संयुक्त सेवा और मसीह के लिए साझा साक्ष्य के माध्यम से एकता की ओर बढ़ती रहे ताकि दुनिया विश्वास कर सके। युद्रत गाजा में ऑर्थोडॉक्स ख्रिस्तियों ने भी उम्मीद के साथ प्रतिक्रिया दी। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स फादर यूसुफ असद ने रॉयटर्स से कहा, हमें विश्वास है कि नए संत पापा हमारी शांति को महत्व देंगे जैसा कि संत पापा फ्रांसिस ने दिया था। उधर वाटिकन प्रेस कार्यालय ने नव निर्वाचित संत पापा लियो 14वें के लिए आगामी कार्यक्रम की घोषणा की है। 3 सप्ताह की उनकी पहली मुलाकातें इस प्रकार हैं। शनिवार 10 मई को संत पापा की कार्डिनलों के साथ बैठक है। रविवार 11 मई संत पेत्रुस महागिरजा घर के बालकनी से रेजिना चेली प्रार्थना की अगुवाई करेंगे। सोमवार 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस के साथ में संत पापा की बैठक। 16 मई शुक्रवार को राजनयिक कोर मिशन के प्रमुखों के साथ में बैठक है। 18 मई रविवार सुबह 10 बजे संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में उद्घाटन मिसा समारोह का अनुष्ठान करेंगे। मंगलवार 20 मई को दीवारों के बाहर संत पॉल महागिरजा घर से संबंधित अपने कार्यों को शुरू करेंगे। बुधवार 21 मई को उनका पहला आम दर्शन समारोह संपन्न होगा। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।